ओम शांति। बाबा हम बच्चों की बुद्धि रूपी झोली को हर रोज ज्ञान के अनेक बातों से सजाते रहते हैं, सशक्त करते रहते हैं और समय प्रति समय मधुबन में भी जब ऐसी बत्तियां होती है तो उसमें भी विशेष हम बच्चों को कितनी सारी नई बातें सुनने की सीखने की प्राप्त हो जाती है। इस तरह संगम युग में बाबा हम बच्चों को विशेष हर ज्ञान की बातों से भरपूर करते हैं और अब समय के हिसाब से बाबा हम बच्चों से क्या रिटर्न चाहते हैं, तो बाबा हम बच्चों से यही चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा ऐसा तैयार हो जाए जो संसार के सामने परमात्मा की प्रत्यक्षता के निमित्त बन जाए। इतनी सजी सजाई मूरत हो जाए जो दुनिया के लोग भी यही कहे कि हाँ यही भगवान के बच्चे हैं। ऐसी हमारे चेहरे और चलन के द्वारा बाप की प्रत्यक्षता हो, साक्षात भगवान की प्रत्यक्षता। बाकी कोई भी सेवा हो तो उसके लिए योग्यता चाहिए। भाई किसी के अंदर जो योग्यता होती है उस योग्यता से वो सेवा करने के लिए काबिल होता है, परंतु ये सेवा में चेहरे और चलन के द्वारा सेवा में योग्यता नहीं, पात्रता चाहिए। और संगम युग में ब्राह्मण जीवन का आधार ही है कि बाबा हमारे जीवन को ऐसा पात्र बना देते हैं, तो ये पात्रता भी भगवान का वरदान है। वरदान कैसे है, तो जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलते जाते हैं और उस श्रीमत का सिंसियरली पालन करते जाते हैं उतनी हमारे अंदर ये पात्रता विकसित होती जाती है जो बाबा की इस महत्वपूर्ण सेवा के लिए हम अपने आप को पात्र बना देते हैं। तो इसीलिए कहा कि दूसरी कोई योग्यता हो ना हो, लेकिन जिसने ये पात्रता विकसित कर लिया वो भगवान के दिल को भी जीत लेता है, क्योंकि अंतिम समय की यही सेवा है और बाबा की यही आश कि मेरे बच्चे अपने चेहरे और चलन के द्वारा मुझे प्रत्यक्ष करें। दुनिया के अंदर भी अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो आज संसार में भी लोग इन्हीं दो बातों पर विशेष अटेंशन देते हैं, खास करके जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स होता है दुनिया, तो पर्सनालिटी में क्या देखा जाता है, व्यक्तित्व विकास करने के लिए जो प्रयत्नशील रहते हैं दुनिया में वो भी अपने चेहरे और चलन को ही सजाते है ना, चेहरे से स्मार्ट दिखने का प्रयास करते हैं और चलन के अंदर क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, निर्भयता होनी चाहिए, तब हम दुनिया के अंदर सफल माने जाते हैं। तो कोई भी व्यक्तित्व विकास का कोर्स होता है उसमें इन्हीं दो बातों के ऊपर विशेष अटेंशन खिंचवाया जाता है। स्मार्ट दिखने के लिए लोग इतना चेहरे पर लिपापोती करते रहते हैं, स्मार्ट दिखे स्मार्ट दिखे, लेकिन जितना ज्यादा लिपापोती करते हो उतना क्या दिखता है, और ही बद्दे लगने लगते है ना। और बाबा ने हमें इससे मुक्त कर दिया तो कितना सुंदर दिखने लगे हम, है ना। तो इसीलिए दुनिया के अंदर भी इन्हीं दो बातों के ऊपर विशेष अटेंशन दिया जाता है। आज प्रैक्टिकल अगर दुनिया में देखे तो चेहरे में लोगों के इतना देह अभिमान आ गया है, अहंकार आ गया है कि उस बात के कारण उनके चेहरे में एक विकृति नजर आती है, और उस विकृति के कारण जिसके सामने भी वो जाते हैं लोगों को उनको उनसे डर लगता है, भय लगता है, क्योंकि चेहरे पर जो विकृति है, चाहे अहंकार है चाहे क्रोध है, तो कितना विकृत चेहरा हो जाता है कि उस विकृति के कारण लोग सामने जाने से भी डरते हैं कि नहीं, इसके सामने हम नहीं जाएंगे। ये आज दुनिया के लोगों के अंदर देह अभिमान के कारण जो विकृति आई है, डर महसूस कराती है। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि तुम दुनिया को सेल्वेज करने वाले हो, सेल्वेशन आर्मी। तो हमारे चेहरे में ऐसा क्या हो कि जिससे खाली बाप की प्रत्यक्षता नहीं, लेकिन साथ साथ हम अनेक आत्माओं के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बन जाए, उनको बाबा के तरफ खींच के ले आए और सहज ही उनका योग बाबा से जुड़ जाए और बाबा से वर्षा लेने के अधिकारी आत्मा बन जाए। ऐसा क्या होना चाहिए चेहरे पर, हाँ? क्या होना चाहिए? फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, यही कहा जाता है कि हमारी मनस्थिति में क्या चल रहा है वो चेहरा बताता है। मनस्थिति में जो चल रहा है वो दृष्टि में प्रकट होने लगता है। दुनिया वालों की दृष्टि में क्या है, तो अहंकार के कारण उनकी दृष्टि भी कैसी है, उनकी वृत्ति कैसी है, उनकी मनस्थिति कैसी है, उनके बोल चाल व्यवहार कैसा हो गया है। तो इसीलिए जब बाबा चेहरा कहता है, चेहरे को ऐसा बनाओ, तो चेहरे को कैसा बनाना है उसमें तीन बातों को भरना है चेहरे में। कौन सी तीन बातें भरनी है? सबसे पहली रूहानियत, दूसरी बात दिव्यता, और तीसरी बात अलौकिकता। अलौकिकता, तो रूहानियत, दिव्यता और अलौकिकता हमारे चेहरे के अंदर आनी चाहिए। अब ये तीन चीजों को भरने के लिए हमें भी अपने आप को सजाना होगा। दुनिया के अंदर लोग मेकअप करते और सजाते हैं अपने आप को, लेकिन ये दिव्य श्रृंगार करने के लिए हमारे चेहरे में क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले हमें भी अपने चेहरे को जो विकारों की तपत है उसे शीतल करना है, शांत करना है। उसके लिए स्वयं को अंतर्मुखी बना देना है, अंतर्मुख। इसलिए हमेशा बाबा कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी, बाह्य मुखी सदा दुखी। पिछले 3 दिनों से मैं सुनती हूँ कि आप लोगों को बहने कितना कहती है कि मौन धारण करो, यहाँ आए हैं कैसे साइलेंस में चलना है, साइलेंस में रहना है, साइलेंस में खाना खाना है, साइलेंस में उठना बैठना है, जाना है तो भी साइलेंस में जाना है। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ आए ही हैं हम सभी किस लिए? अपने चेहरे को सजाने के लिए। तो अंतर्मुखी सदा सुखी, बाह्य मुखी सदा दुखी। यहाँ आए हैं अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए, और अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए अगर अंतर्मुखी हम नहीं बने तो सुख का अनुभव कहाँ से होगा? बाह्यता में जितना आते हैं कोई न कोई बात मुख से निकल जाती है, कोई न कोई शब्द ऐसे निकल जाते हैं जो खुद भी परेशान होते रहते हैं, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, तो खुद को भी दुखी करते हैं और हमारे मन के संकल्पों के तरंग हमारे आसपास वालों को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो जब यहाँ आए हैं तो कम से कम यहाँ का पूरा लाभ तो ले लेवे हम। तो अंतर्मुखता, मुझे दादी गुलजार की क्लास की एक बात याद आती है कि दादी ने बहुत सुंदर अंतर्मुखता का डेफिनेशन दिया था कि अंतर्मुखता किसको कहा जाता है। तो कहा कि ये फेस के ऊपर मुख्य इंद्रियां, आंख है, कान है, मुख है, नाक है और सोचने का दिमाग है, मुख्य रूप की इंद्रियां फेस पर है। जब ये बाह्यता में आ जाती है, बाहर का देखना, बाहर का सुनना, बाहर की बातें करना, बाहर की बातों को सोचना, वो दुख क्रिएट करती है, इसलिए उसको अंतर्मुखी करो, यानी उसको भीतर ले जाओ, अंदर ले जा करके उसको शांति में स्थित कर दो, साइलेंस पावर से भरने लगो। जितना साइलेंस पावर उसमें भरते जाएंगे तो वो विकारों की जो तपत है वो शीतल होने लगेगी, शांत होने लगेगी, मन शांत, दृष्टि शीतल, मुख के शब्द अनेकों को शांति प्रदान करने वाले, तो हर इंद्रिया जैसे शांत और शीतल होने लगेगी तपत को कम करने के लिए, क्योंकि तभी विकृति खत्म होगी। उसके बाद जैसे ही ये शांत हुआ उसके बाद उसको पवित्रता की शक्ति से बाबा के प्रकाश लेकर के, बाबा से शक्ति लेकर के, पवित्रता की शक्ति से उसको सजाना है, निखारना है। शीतल हो गया, कोई भी मेकअप करते तो पहले फेस को धोना पड़ता है, जब तक फेस को धोएंगे नहीं तब तक मेकअप लगेगा नहीं। तो इसी तरह शांति की शक्ति से हम भी क्या करते हैं, चेहरे को शीतल करके रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश। और जैसे ही रिफ्रेश हुआ फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, दुनिया के अंदर मेकअप करने के समय फाउंडेशन लगाते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं। तो हमें कौन सा फाउंडेशन लगाना है? पवित्रता का फाउंडेशन ये लगाना है। तो पवित्रता का फाउंडेशन लगाएंगे तो उससे चेहरे में निखार आने लगेगा, निखार आता है। और जैसे जैसे निखार आता है, आत्मा जैसे स्वच्छ होने लगती है, निर्मल होने लगती है, तो चेहरे पर वो निर्मलता आने लगती है। हमारी दादियों का चेहरा देखो कितना निर्मल है, प्योर एकदम। तो चेहरे पर से वो प्रकट होता है, उन्होंने कोई मेकअप नहीं लगाया लेकिन फिर भी वो शाइन, उनके चेहरे पर पवित्रता की चमक, जिसने चेहरे को इतना निर्मल सुंदर बनाया है। तो पवित्रता की शक्ति का फाउंडेशन लगाते हुए अपने चेहरे के अंदर निर्मलता लानी है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद ज्ञान के एक एक बातों से सजाना शुरू करना है। ज्ञान के विभिन्न पॉइंट्स मिलती है, लेकिन एक एक पॉइंट्स का प्रयोग करते हुए उसके अनुभवी मूरत बनना है। उससे क्या होगा? तो हमारे चेहरे पर मैच्योरिटी आएंगी, परिपक्वता आएगी। तो ज्ञान की एक एक बात से सजाते हुए, ज्ञान की एक एक पॉइंट को सिर्फ बुद्धि तक न रखते हुए उसको प्रैक्टिकल कर्मेंद्रिय से प्रयोग करना है, और प्रयोग में लाते हुए उसका अनुभव करना है। कई पॉइंट्स बाबा की हमें मिली है, लेकिन उन पॉइंट्स का हमें कोई अनुभव नहीं है। आज दुनिया के अंदर भी स्कूल में अगर जाएंगे तो स्कूल में एक होता है थियरी, एक होता है प्रैक्टिकल। हाँ, साइंस के स्टूडेंट के लिए एक थियरी होती है जो पढ़ाते हैं उनको क्लास में, फिर उनको लेबोरेटरी में जाकर, प्रयोगशाला में जाकर प्रैक्टिकल प्रयोग करना होता है। और मार्क्स किस में ज्यादा मिलते हैं? थियरी में या प्रैक्टिकल में? प्रैक्टिकल में ज्यादा मिलता है। तो इसी तरह हर रोज सुबह जो हम मुरली सुनते हैं ये थियरी है। जैसे कई बार कई भाई बहनों को ये नशा रहता है कि जब से हम ज्ञान में आए तब से एक दिन भी हमारी मुरली मिस नहीं हुई। बहुत अच्छी बात है, ये बधाई के पात्र है। लेकिन सुबह सुन लिया, पॉइंट नोट कर लिया, उसके बाद डायरी बंद, तो दूसरे दिन खुलेगी, है ना? दिन भर में हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बाबा की मुरली का अगर एक भी पॉइंट हमने प्रयोग नहीं किया तो क्या फायदा, है ना? और मार्क्स ज्यादा मिलना है प्रैक्टिकल में। तो इसीलिए थियरी में बहुत रेगुलर पंक्चुअल हम रहे, बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए, क्योंकि थियरी के भी मार्क्स एडिशन तो होते हैं। लेकिन फिर दिन भर में हम अपनी जीवन की प्रयोगशाला में कितना उसका प्रयोग करके देखते हैं। तो एक एक ज्ञान की बातों का प्रैक्टिकल प्रयोग करना माना अनुभवी बनना। जैसे एक बच्चे को टीचर कितना भी सिखा दे थियरी में कि ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, लेकिन जब प्रयोगशाला में ले जा करके प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि ये केमिकल मिक्स करने से, ये केमिकल के साथ मिक्स करने से ये बनता है, देखने के बाद वो बच्चा कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि उसने प्रैक्टिकल किया हुआ है। तो इसी तरह बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि तुम बच्चों को प्रैक्टिकल में एक एक बात को जीवन के अंदर अप्लाई करना है, प्रयोग में लाना है। और प्रयोग में लाएंगे तो अनुभवी बनेंगे। कई बार कई लोग कहते हैं हमें तो अनुभव होता ही नहीं, तो इसका मतलब कि हमने तो कभी बाबा की बातों को प्रैक्टिकल जीवन में प्रयोग किया ही नहीं। अगर किया ही नहीं है तो अनुभव कहां से होगा? अनुभव करना चाहते हैं तो प्रयोग करके देखो, अनुभव मिलेगा। और हर पॉइंट का कहां एप्लीकेशन करना है उसको विशेष ध्यान देना। कई पॉइंट मनसा लेवल पर प्रयोग करने की होती है, कई पॉइंट्स प्रैक्टिकल व्यवहार में प्रयोग करने की होती है, कई पॉइंट्स अपने जीवन की धारणा के लिए प्रयोग करनी होती है, तो कई पॉइंट संबंधों में प्रयोग करने की होती है, तो कई पॉइंट सेवा की सफलता के लिए प्रयोग करनी होती है। तो वो बाबा की सारी बातें उस अनुसार प्रयोग करते हुए चलना और एक एक बात का प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करना, क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं हम बच्चों को कि जो अनुभवी मूर्ख होंगे वो कभी धोखा नहीं खा सकते। और माया का काम क्या है, कहां से आती है, कि जहां जिस बात का हमें एक्सपीरियंस नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, वहीं से आएगी कि इसको इस बात का अनुभव नहीं है इसलिए वहीं धोखा दो उसको, और वहीं से हमारे जीवन के अंदर एंट्री मारेगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाबा के बच्चे कभी माया के धोखे से धोखा खाने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि एक एक बात का प्रैक्टिकल अनुभव किया हुआ है, अनुभवी मूर्त है तो धोखा नहीं खा सकते। धोखा वही खाता है जिनको अनुभव नहीं है जिंदगी का। जैसे दुनिया में भी देखते हैं कि कोई कन्याएं होती है जिन्हें अनुभव नहीं होता है, धोखा खा लेती है, लेकिन अनुभवी बन गए तो उसके बाद धोखा नहीं खाती है, वो दूसरों को भी पहले से सावधान करती है। तो ज्ञान जो बाबा ने हमें दिया है वो ज्ञान की एक एक पॉइंट की गहराई में जाकर के उसका प्रयोग करते हुए अनुभवी मूर्त जितना बनेंगे तो चेहरे पर उसकी परिपक्वता नजर आएगी। और परिपक्व व्यक्ति माया के छोटे से छोटी गफलत में भी धोखा नहीं खा सकता है, क्योंकि परिपक्व है अंदर से, तो चेहरे पर वो मैच्योरिटी नजर आती है। जैसे मम्मा की विशेषता में हर कोई ये बात वर्णन करता है कि मम्मा गंभीर थी और जैसे हर बात का अनुभव था मम्मा को। कन्या होते हुए भी उनको अनुभवी कहा क्योंकि वो गंभीरता उनके चेहरे की ऐसी होती थी कि कोई उनके सामने हंसी मजाक करना मम्मा के साथ नहीं, मम्मा को देखते ही जैसे वो भी शांत हो जाते थे, वो भी शीतलता की मूर्ति बन जाते थे, वो भी ज्ञान के गहरे से गहरे रहस्य में जाने का प्रयत्न करते थे या मम्मा से सुनना चाहते थे। इतनी मम्मा की मैच्योरिटी की स्टेज थी छोटेपन में ही। तो ज्ञान के गोहिये रहस्य से सजाते हुए परिपक्व अवस्था चेहरे के ऊपर, उसके बाद क्या करना है, तो बाबा से योग लगाते हुए योग की शक्ति को अंदर में भरना है और उस परिपक्वता को और पॉलिश करना है। योग युक्त युक्ति युक्त जो हो जाता है, तो इसीलिए योग की शक्ति को अपने अंदर समाते जाना है। बाबा को याद करते हुए जब बाबा की शक्ति को प्रकाश को अंदर समाते जाते अपने स्वरूप में, तो वो योग की जो शक्ति के झलक है चेहरे से जैसे टपकने लगती है। जो बाबा कहते हैं योग युक्त चेहरा कैसा होता है, कितना दिव्य चेहरा बन जाता है वो, तो दिव्यता को विशेष रूप से लाने के लिए पवित्रता और योग की शक्ति ये हमारे चेहरे को निखारती है। तो योग की शक्ति को अपने अंदर समाते जाना है। आत्मा में जितना समाते जाएंगे तो उसका रंग चेहरे पर टपकने लगता है। और उसके बाद जब इतनी शक्ति अंदर में आ गई, ज्ञान के गुह्य रहस्य की, पवित्रता की, अंतर्मुखता से शांति की और योग की शक्ति, तो आत्मा अंदर से भरपूर हो जाती है। और जो भरपूर आत्मा है उसकी आंख कहीं डूबती नहीं। जो भरपूर है, तो भरपूरता माना संतुष्टता। तो संतुष्टता का धन, जैसे उसके चेहरे की वो रॉयल्टी को निखारती है। कल मुझे बहुत अच्छी बात लगी जब मैं सुन रही थी कि सुषमा बेन आप लोगों से एक्सरसाइज करा रहे थे कि आप क्या बनना चाहते हैं, राजघराने में जाना चाहते हैं, शाहूकार प्रजा में जाना चाहते हैं, या दास दासी बनना चाहते, क्या बनना चाहते। हरे को लिखने के लिए उन्होंने कहा कि आप अपना फाइनल करो कि मुझे अपनी वर्तमान स्थिति को देखते हुए कहाँ जाना है। बहुत अच्छा लगा मुझे, और आप सभी ने जरूर कुछ न कुछ लिखा होगा उसमें। मैं समझती हूँ यहाँ दास दासी में तो किसी ने नाम नहीं लिखा होगा, है ना। तो हर कोई शाहूकार प्रजा या रॉयल फैमिली में जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा ये बात कि भाई राजा रानी तो कोई कोई बनेंगे, लेकिन रॉयल घराने में तो जा सकते हैं। तो रॉयल घराने में जो जाने वाले हैं वो भी लिखे कि हाँ हम रॉयल घराने में जाने वाले। तो रॉयल घराने के चेहरा और चलन कैसी होती है? अब अपने आप में देखो कि रॉयल घराने में जाने वाली वो चेहरे और चलन है हमारी, वो चेहरा के संतुष्टता माना भरपूरता की स्थिति। और खाली भरपूरता की बात नहीं है, लेकिन रॉयल्टी उसमें, उसकी आंखें कहीं डूब नहीं सकती है। उसकी चलन कितनी रॉयल होती है, चेहरे का भाव देखो तो कितना सुंदर होता है। बाबा की तीन चार दिन पहले की मुरली जब मैं सुन रही थी, तो बाबा ने कहा कि जो राजा राजा एक घराने वाले, उसमें भी रॉयल फैमिली के जो बहुत अच्छे रॉयल घराने के लोग होते हैं ना, उसको कोई चीज देना चाहे कोई, तो भी इशारा करते थे सेक्रेटरी को दे दो, वो हाथ भी नहीं लगाते थे। थोड़े दिन पहले की ही बाबा की मुरली सुन रही थी, तो है ना, इतने रॉयल घराना कि वो अपना हाथ भी नहीं लगाते, वो सेक्रेटरी को इशारा करते हैं कि आप ले लो, आप इनको दे दो, ये इशारा करते। तो कहने का भावार्थ यही कि चेहरे के अंदर वो रॉयल्टी संतुष्टता से आएगी। तो स्वयं स्वयं से संतुष्ट, हम दूसरों से और दूसरे हमसे संतुष्ट, और ऐसे जो होंगे उनसे ही बाबा भी संतुष्ट। तो जो संतुष्ट होंगे उसके चेहरे पर वो प्रसन्नता छाई हुई होगी। भरपूर जो अंदर है उसके चेहरे पर वो प्रसन्नता की झलक, खुशनुमा चेहरा, क्योंकि उसको अपनी खुशकिस्मती पर बड़ा नाज है। तो खुशकिस्मती, तो हम कितने रॉयल घर में जाने वाले, रॉयल फैमिलीज के मेंबर बनने वाले, रॉयल बाप के बच्चे संगम युग पर भी, तो वो चेहरा हमारा कितना प्रसन्नता से भरपूर होगा, जिसके अंदर अति इंद्रिय सुख। एक तो खुशकिस्मती वाला चेहरा जहाँ खुशी एक नेचुरल रूप में हो, अति इंद्रिय सुख जिसमें समाया हुआ हो जिस चेहरे के ऊपर, और तीसरा जैसे परमात्मा प्यार में समाये हुए, डूबे हुए, परमात्मा प्यार में नित्य जैसे समाये रहे। तो ये चीजें चेहरे पर चाहिए। और चलन में क्या चाहिए? ये चीजें चेहरे पर चाहिए, अंतर्मुखता जिससे साइलेंस, दूसरा पवित्रता जिससे निर्मलता आए, निर्माणता आए, ज्ञान के गुह्य रहस्य से सजाते हुए ज्ञान युक्त परिपक्व अवस्था, और योग की शक्ति से उसके अंदर प्रकाश वर्णीय वो चीज समा जाए और संतुष्टता की प्रसन्नता, ये पांच बातें चेहरे पर। अगर यहां वो लक्षण होंगे तो वहां भी हम उसी घराने में जाएंगे, बाकी पेपर पर लिख देने से चले जाएंगे ऐसा नहीं होगा। वो चीजें संगम युग के जीवन के अंदर होनी जरूरी है, तब वहां होगा। और चलन में क्या होगा, तो चलन माना चरित्र। किसी के चरित्र के लिए जब बात करते हैं तो क्या कहते हैं, इसकी चलन अच्छी है, रॉयल चलन है ना, चरित्र इतना ऊंचा है। या किसी का चरित्र अगर ठीक ना हो तो क्या कहते हैं, इसकी चलन ठीक नहीं। कहा जाता है कि पहले के जमाने के जो बुजुर्ग होते थे, तो घर में अगर लक्ष्मी आती थी ब्याह करके तो चाल से उसको पता चल जाता था ये सुलक्ष्मी है या कुलक्ष्मी है ना। माताएं तो इस बात की अनुभवी है। मुझे याद आता है कि बड़ी दीदी जी के लिए हमेशा ये कहा जाता था कि बड़ी दीदी जी जब पांडव भवन के आंगन में खड़ी होती थी और गेट से कोई भी आता था तो उसकी चाल को देखकर बड़ी दीदी जैसे उसकी तीनों कालों की जैसे जन्म पत्री निकाल देती थी कि ये आत्मा कितना ज्ञान में चलने वाली है या नहीं चल पाए। तो बड़ी दीदी जी के पास ये विशेषता थी कि किसी आत्मा की चाल से वो पहचान जाती थी कि ये किस क्वालिटी की आत्मा है। इतनी तेज परख शक्ति थी दीदी की, बात भी नहीं करती थी लेकिन पहचान जाती थी और कह भी देती थी कई बार कह देती थी, है ना। मुझे याद आता है कि जब मैं अंदर आ रही थी पांडव भवन के आंगन में, नक्की लेख के चक्कर लगा करके आई थी, मुझे दीदी की ये विशेषता मालूम नहीं थी। तो मैं जैसे छोटी थी उस समय, तो 20-22 साल की होंगी मैं, तो मैं जैसे ही आई तो बड़ी दीदी जी के सामने जैसे गई ओम शांति करने के लिए, तो बड़ी दीदी जी ने उस वक्त मुझे जैसे एक वरदान दे दिया था। बड़ी दीदी ने कहा कि तुम है ना बहुत आगे जाओगे पुरुषार्थ में, ये ब्राह्मण जीवन में बहुत उन्नति करोगे। तो उस समय तो मैं बहुत छोटी थी, तो मैंने कहा नहीं दीदी मैं कहाँ इतना जा सकती हूँ, मैं तो भी तो नई नई हूँ। तो बड़ी दीदी जी ने कहा नहीं तुम बहुत आगे जाएगी। तो उसके बाद मुझे शीलू बेन ने बताया कि दीदी जी के जो बोल है ये वरदान है, मना नहीं करो, ना करने से क्या होगा, वो वरदान साकार नहीं होगा, इसीलिए दीदी का ये वरदान एक्सेप्ट कर। क्योंकि दीदी कभी भी ऐसे ही नहीं निकालती है शब्द मुख से, दीदी के एक एक शब्द के अंदर इतनी शक्ति है कि वो तीनों कालों को जैसे देख लेती है और बोलती है। तो कितने सालों पहले की बात, 1980 की ये बात है, लेकिन मैं कभी भूल नहीं पाई उस बात को, हमेशा जैसे अंदर में जैसे बचती रहती है कि बड़ी दीदी ने ये वरदान दिया था। तो कहने का भावार्थ के चलन माना चरित्र, के उस व्यक्ति के चरित्र से उसका पूरा तीनों कालों को समझ सकते हैं कि उसका चरित्र से चलन से वो चरित्र कैसा है। इसीलिए देवी देवताओं के चलन के लिए भी कहते हैं पद्म कमल के चलन भी उनकी इतनी पवित्र श्रेष्ठ। चरित्र के लिए एक एक इंद्रियों के कमल के साथ उसकी भेंट की जाती है, नैन कमल, मुख कमल, हृदय कमल, हस्त कमल, चरण कमल, है ना। तो चलन माना चरित्र, तो अपने चरित्र से हमें पता चलता है कि हमारी चलन के अंदर वो रूहानियत, दिव्यता और अलौकिकता कितनी आई है। ये चलन की बात है। दूसरा, चलन के अंदर नशा होता है। जैसे दुनिया के अंदर भी कोई रॉयल घराने के लोग होते हैं तो उनकी चाल में एक नशा होता है। बाबा हमेशा कहते बच्चे तुम जब चलो ना तो नारायणी नशे वाली चाल, नारायणी नशा। तो नशा का आधार क्या है, नशा का आधार क्या है? कल आपने सुनी मनोरमा दीदी के क्लास की बात याद करो, क्या सुनाया मनोरमा दीदी ने? निश्चय, निश्चय बुद्धि विजयंती, चारों प्रकार के निश्चय की बात की मनोरमा दीदी ने। और जब चारों ही प्रकार के निश्चय के निश्चय है, पक्का निश्चय है हमें, तो हमारे चाल में नशा आ जाता है, स्वतः नशे वाली चाल हो जाती है, चलन हमारी ऐसी नशे वाली कि जिसको देख करके कोई कहे दूर से ही ऐसे चल रहा है जैसे उसको कुछ प्राप्त हो गया है, उसको कुछ मिल गया है। और वो भी हमारे पास दौड़े दौड़े आए पूछने के लिए कि भाई आपको ऐसा क्या मिला है, क्या आपकी चाल बताती है कि आप धरती पर जैसे चल नहीं रहे हैं, उड़ रहे हैं। यह है चलन। तो बाबा भी हमारी चाल के अंदर यही देखना चाहता है कि निश्चय हमारा जितना पक्का होगा। निश्चय की पूरी डेफिनेशन उन्होंने कल पूरे क्लास के अंदर आपको बताई, चारों प्रकार का निश्चय क्या होता है। तो निश्चय जितना हमारा पक्का, चाहे स्वयं में, बाबा में, परिवार में, ड्रामा में, कहीं पर भी कोई संशय की मार्जिन नहीं, तो उसके चाल में वो नशा स्वतः दिखाई देता है। क्योंकि चेहरे पर भाव कौन सा है, निश्चिंतता का भाव, तो नशे वाली चाल। चिंता होती है तो चाल कैसी होती है, और निश्चिंत जो होता है उसकी चाल कैसी होती है? कोई परवाह नहीं, जैसे उड़ रहा है, खुशी में आगे बढ़ रहा है, ऐसी चाल। और इतना ही नहीं, लेकिन निश्चिंतता का भाव चेहरे पर कैसे आ जाता है? क्योंकि निश्चित भावी को हम जानते हैं कि जो होगा फ्यूचर में भी जो होगा उसकी भी कोई चिंता नहीं, क्योंकि जो होगा वो अच्छा ही होना है, हमारे साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता है, ये गारंटी है बाबा की। आज दिन तक हमारे साथ कभी कोई बुरा हुआ है? कितनी भी बड़े से बड़ी परिस्थिति या पहाड़ आ जाए, लेकिन बड़े से बड़े परीक्षा रूपी पहाड़ भी आ जाए, उस परीक्षा के बाद क्या महसूस होता है? बाबा की मदद को जो महसूस किया, और ऐसा लगता है जैसे मक्खन से बाल, परीक्षा इतनी बड़ी थी लेकिन जैसे मक्खन से बाल निकल गया, ऐसी खुशी होती है कि नहीं होती है? तो इसीलिए जहाँ निश्चय है, नशा है चाल के अंदर, निश्चिंतता का भाव है, क्योंकि निश्चित भावी को भी हम जानते हैं कि जो भावी है हमारी वो भी बहुत सुखद है। हमारा अकल्याण करने की शक्ति किसी मनुष्य के अंदर नहीं है, ये विश्वास, ये नशा। किसके बच्चे हैं हम? तो हमारा अकल्याण करने की ताकत कोई मनुष्य की हो सकती है? मैंने जीवन के अंदर हर बार ये महसूस किया, जब भी परीक्षाएं, किसके लिए नहीं आती है, परीक्षा हर एक के लिए आती है, लेकिन जब भी परीक्षा आई, परीक्षा पास करने के बाद हमने यही महसूस किया जैसे माया ने सोचा इसको धक्का मार दो, गिरा दो उसको। लेकिन जैसे ही उसने धक्का मारा और बाबा ने हमें पंख दे दिया, हम उड़ करके और ऊपर उठ गए, नीचे गिरने की तो बात ही नहीं। तो इतनी खुशी होती थी कि कोई धक्का मारने का प्रयत्न करता है, इसको गिरा दो, ऊपर से नीचे गिर जाइए। लेकिन उसी वक्त जैसे ही धक्का मारा, हमारे पास कोई आधार नहीं, एक बाबा, और ऐसा महसूस होता है कि बाबा ने उसी वक्त पंख खोल दिए, और क्या नीचे गिरने के बजाय क्या और ऊपर उड़ गए। तो चिड़िया के लिए कहते हैं ना कि चिड़िया जब अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है, खास करके वो बहुत बड़ा जो पक्षी आता है बाज का पक्षी, उसके लिए कहा जाता है कि वो अपने बच्चे को जब उड़ना सिखाती है तो क्या करती है, ऊपर जाती है चोंच में ले जा करके और छोड़ देती है, और वो बच्चा पंख फड़फड़ाने लगता है और उड़ने लगता है। तो ऐसा ही होता है, माया भी क्या करती है, देखते हैं ये आगे बढ़ नहीं रहा है तो क्या करते हैं। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं माया जो है ना मेरी सबसे आज्ञाकारी बच्ची है, उसको कहता हूँ ये बच्चा आगे बढ़ ही नहीं रहा, अभी तू कहीं कुछ कर उसको, धक्का मार उसको। तो माया भी क्या करती है, ऐसा धक्का मारती है कि गिरा दो इसको, और उसी वक्त हम क्या करते हैं, पंख फड़फड़ा करके और ऊपर उड़ना शुरू करते हैं। तो हर परीक्षा के बाद उड़ने का जो अनुभव हुआ है कितना न्यारा और निराला होता है, तो परीक्षा किसके सामने नहीं आती। इसलिए बाबा कई बार हमें कहते हैं परीक्षा को हमेशा तोहफा समझो, कि ये कुछ लेकर के आया है हमें देने के लिए, तोहफा है, तूफान नहीं है, है ना। तो चाल में क्या हो, चाल में ऐसी निश्चिंतता हो, ऐसा नशा हो कि हमारे साथ कोई कल्याण कर ही नहीं सकता, लेकिन किसके साथ, जिसकी चाल में, चलन में चरित्र संपूर्ण रीति से हो, मर्यादा पुरुषोत्तम वाला चरित्र हो, उसकी चाल में निश्चिंतता होगी। अगर चरित्र में कहीं न कहीं अगर थोड़ी बहुत कमी होगी तो क्या होगा, वो चाल कैसी हो जाएगी, वो चेहरा कैसा हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कहीं भी चरित्र के अंदर कोई ऐसी बात न हो कि जिसके कारण आपके चेहरे पर वो गिल्ट, वो रिग्रेट चेहरे पर समाया जाए, और कहीं न कहीं कुछ न कुछ मन के अंदर व्यर्थ संकल्प, नकारात्मक संकल्प चलना आरंभ हो जाए। इसलिए चाल ऐसी हमारी हो नारायणी नशे वाली एकदम, जो बस चलते हैं तो लोग दूर से ऐसा महसूस कर जैसे इसको कुछ मिल गया है, कुछ मिल गया है, और वो दौड़े दौड़े पूछने आए कि ऐसा क्या मिला है आपको, हम सभी का जीवन में इतना टेंशन है, आप इतना खुशी में कैसे रह सकते हैं। तो खुशी, खुशियों से भरी चाल हो हमारी, निश्चयवात्मक चाल हो हमारी, इतनी कॉन्फिडेंस वाली। तो दुनिया में लोग खोखला कॉन्फिडेंस दिखाते हैं अपनी चाल के अंदर, लेकिन हमें बाबा भरपूरता से वो चाल चलने के लिए कहते हैं कि जिसको देख करके दुनिया भी कहे हाँ इसके चेहरे और चलन में वो चमक है जो एक नारायणी नशे वाली है, है ना। तो ये है चलन और चेहरे के माध्यम से बाबा की प्रत्यक्षता करना। अगर कहीं ना कहीं इन बातों की धारणा हमारे जीवन के अंदर नहीं है तो बाबा की प्रत्यक्षता तो बहुत दूर हो जाएंगी, हम अपने आप को भी पूरी रीति से सजा नहीं पाएंगे, और तब अफसोस होगा कि वो चिट्ठी में तो मैंने लिखा था भट्टी में कि मैं रॉयल घराने में जाऊंगी, शाहूकार प्रजा में जाऊंगी, लेकिन ये क्या हो गया मेरे साथ। तो आप सबने जो लिखा है ना कल, तो क्या करेंगे, अब अपने चेहरे और चलन को ऐसा बना दो कि जो लिखत है ना उससे आगे का नंबर आपको मिल जाए, पीछे नहीं जाए, ठीक है ना। तो ऐसी वंडरफुल आपके चेहरे और चलन की स्थिति हो, ऐसी चमक हो, वो चमक खुशियों वाली, क्योंकि जो खुश किस्मती आपको मिली है वो दुनिया में किसी भी आत्मा के पास नहीं है। ऐसी खुश किस्मत आत्माएं हो, खुश नसीब आत्माएं हो, तो इसीलिए चेहरे और चलन को ऐसा सुंदर, ज्ञानयुक्त, योगयुक्त और सर्वश्रेष्ठ गुणों से उसको सजाते चलो, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।
कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है।
तुम्हारी ये एहसास दिलाती है।